अब आगे देखिए, इसमें छोटी छोटी दुआएं हैं जो आपकी मेरी ज़िंदगी में डे टू डे आती हैं, जिससे हम फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें से महीने के आगाज़ में जो पहली दुआ होगी वो क्या होगी? चांद देखने की दुआ। चांद हर माह ही दिखता है। अभी आप अपने चांद को देख कर ना कह दें, जो आपको माशाल्लाह हर वक्त ही नज़र आता है, लेकिन जो अल्लाह का बनाया हुआ चांद है, ये महीने में एक बार दिखता है। इसको हिलाल कहते हैं, बारीक सा होता है। उसी की दुआ देखते हैं। आइए, नया चांद देखने की दुआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिलम्नी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु रब्बना व तरदा रब्बुना व रब्बुक अल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, ए अल्लाह तू इसे अमन, ईमान, सलामती, इस्लाम और इस चीज़ की तौफीक के साथ जिसे तू पसंद करता है हम पर तुलू फरमा, ए हमारे रब, और जिससे तू राज़ी होता है, ए चांद, हमारा और तुम्हारा रब अल्लाह है। आप देखिए, मुख्तलिफ अल्फाज के फ़र्क से ये दुआ आपको रिवायात में मिलती है। ये जो भी अल्फाज आपको दिए गए, ये दारमी की रिवायत है 1687। हो सकता है कि आपके पास कोई बुक हो तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो, मसलन जैसे यहाँ अल्लाहुम्मा अहिल्ला हुए तो कहीं कुछ दुआओं में अहलल हु भी है, और इसी तरह के फ़र्क लफ्ज़ भी हैं। बिलयुम्नी वल ईमान भी है। तो अगर रेफरेंस नीचे ठीक है तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। अब ज़रा इसकी खूबसूरती देखिएगा। पहली बात है अल्लाह अकबर। आसमान है और उस पर चांद है, उसको देखकर आप कहते हैं अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानी है। किसकी ज़रूरत, किसकी ताकत कि चांद को निकाल दे या उसको डुबो दे? अल्लाह के सिवा किसी की ताकत नहीं है। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि जब आप चांद के निकलने और छुपने को देखते हैं ना, तो आपको ज़रूर एक बार अल्लाह का देखना और अल्लाह का छुपना याद आना चाहिए। आज अल्लाह ताला हमारी सर की आंखों से दूर है, पूरी कोशिश के बावजूद भी हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन हमारा ईमान है एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने रब को देखेंगे, और हम अपने रब को ऐसे ही देखेंगे जैसे आज बग़ैर बादलों वाली रात में कोई चौदहवीं के चांद को देखता है। तो जब भी नया चांद दिखे, अभी चंद दिन पहले भी दिखा है ना नया चांद, तो मैं उसको जब देखती हूँ तो मुझे ज़रूर एक दफ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़त नज़री इला वज्हिका व शौक़ इला लिक़ाइका, ये दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मैं आपके चेहरे को देखने की लज़्ज़त और आपसे मुलाकात का शौक़ मांगती हूँ। अल्लाह के नबी ये दुआ में मांगते थे। हमें तो शायद कम ही ख्याल आया हो, इंसान हमेशा उसको मिलना चाहता है, उसका चेहरा देखना चाहता है जिससे मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे जो ये खूबसूरत सब एक तजुर्बा करने का मौका दिया है ना, हर महीने में इसको किया करें। आज ये सुन्नत छुटती जा रही है, रमज़ान और ईद का चांद तो है ही, हर माह जो भी 29 तारीख हो उस दिन ज़रूर चांद दिखने की कोशिश किया करें, और अगर 29 का ना दिखे तो अगले दिन 30 का तो फिर लाजमी दिखता है। फिर वहाँ बच्चों के दिल जोड़िए अल्लाह से, हम जन्नत में अल्लाह को देखेंगे, दीदार होगा और ये सारी बातें जो आप सीखते हैं। फिर आप देखिए कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिलम्नी वल ईमान, अल्लाह के नबी ने कहा ये दुआ जो पढ़ता है वो पूरा महीना अमन और अमान में रहता है, सलामती में रहता है। क्या पता ये दुआ पढ़ना आपको किसी चोरी से बचा ले, हादसे से बचा ले, घर के अंदर किसी नुकसान से बचा ले, और हमारा ईमान अल्लाह ने कहा है तो ये ठीक ही होगा। फिर आप देखिए कि अमन और अमान के बाद सलामती और सलाम मांगा। आज दुनिया पीस के पीछे भाग रही है ना, कैसे अमन, कहाँ से आए पीस कॉन्फ्रेंसेस, पूरी दुनिया ग्लोब पे ले जाकर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को रखा, लेकिन चांद को देखकर ये दुआ करने वाले का दिल जिस तरह पीसफुल होगा, जैसे उसका दिल खुशी से भरा होगा, इसका तो कोई दूसरा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता ना। फिर आप देखिए कि जब आप इसकी बात करते हैं तो बतौफ़ी के लिए माँ तो हैब्बू, कितनी खूबसूरत बात है, ए अल्लाह उस चीज़ की तौफीक जिसे तू पसंद कर। हम कितनी ही नेकियां कर सकते हैं, नहीं करते, तौफीक अल्लाह देता है, हम नहीं लेते। तो जब ये बात आप पढ़ेंगे ना तौफीक कि अल्लाह मुझे नेकियों की तौफीक दे दे, तो आप देखेंगे कि इसके बाद इंसान की ज़िंदगी और ख़ूबसूरत कामों में गुजर जाती है, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों की तौफीक अता फरमाए जो हमारी नेकियों को बढ़ा सके। हमारे गुनाहों के पटारे बंद हों, उसमें से खैर की बातें हों। आप इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपका दिल कहेगा कि वाकई मेरा रब मुझे इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर देखिए आखिरी लफ्ज़ क्या खूबसूरत हैं दुआ के रब्बुना व रब्बुक अल्लाह, हमारा भी रब और तेरा भी रब। यहाँ तेरा किसको कह रहे हैं आप? चांद को कह रहे हैं। यहाँ अकीदे की इस्लाह है। अरबों में बहुत सारे लोग चांद की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहिम के दौर में भी लोग सितारों और चांद की पूजा करते थे, तो जो सूरज चांद को पूजे कहा ये सूरज चांद का रब भी अल्लाह। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन बेजान चीज़ों को आग में डाल देगा, तो वो असल में उनके पूजा करने वाले जो होते हैं, जो पुजारी हैं, उनको शर्मिंदगी होगी उस वक़्त कि हम जिनको पूजते रह गए वो तो खुद आज अपने आप को ना बचा सके। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे लकड़ी के बुतों को भी आग में डाला जाएगा। वक़ूदुहन नास वल हिजारा में आप पढ़ते हैं, तो गोया कि एक प्यारी सी दुआ है जिसमें अल्लाह ताला को देखने की भी ख्वाहिश है और बाकी चीज़ों की। आइए इसको मांगते हैं। और अगर आपने इस माह के चांद को देखकर नहीं मांगी थी तो आप जिस दिन देखे उस दिन मांग लीजिए और अगले चांद से पहले इसको देखने का एहतमाम कीजिए। आइए दुआ मांगते हैं।
الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام التوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله
ख़ास तौर पे एक एक चीज़ को जब पढ़ें तो उसके ऊपर अपनी फीलिंग्स लेकर आएं और फिर उससे अपना दिल जोड़ें। इंशाल्लाह ताला इन छोटी छोटी दुआओं से बहुत बड़े बड़े फ़ायदे मैंने होते देखे हैं। दिल बदल जाता है और जिस दिन दिल बदल गया ना उसके बाद तो बाकी कोई चीज़ पीछे नहीं रहेगी। असल ये हमारा दिल ही है जो हमें अभी तक पूरे का पूरा अल्लाह की तरफ आने नहीं दे रहा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली दुआ जो है वो है रोज़ा इफ्तार करते वक्त की दुआएँ। अब आप इंशाल्लाह इस बुक के थ्रू डे टू डे एक एक दुआ याद करेंगे कि फिर जब वक्त आएगा तो आपको फिर उस वक्त मुश्किल नहीं होगी। अमूमन जब भी रमज़ान आता है हम दुआओं की कोई बुक खोलते हैं और दुआएं पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। देख के पढ़ी हुई दुआएं कभी भी दिल से निकली हुई दुआओं और ज़ुबानी पढ़ी हुई दुआओं की तरह नहीं हो सकती। कोशिश आप करते रहेंगे, दिल आपका अल्लाह ताला जुड़ता रहेगा। तो रोज़े के नाते से मुख्तलिफ दुआएँ हैं, बारी बारी देखेंगे। तो रोज़ा इफ्तार करने वक्त की दुआएं, पहली दुआ क्या है? अब ज़रा सा इस पे आपको तवज्जो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे कल्चर में अमूमन ये दुआ नहीं पढ़ी या पढ़ाई जाती और ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अमूमन नई होती हैं। जब भी कोई नई चीज़ हम पढ़ते हैं, जो नई चीज़ मांगते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम थोड़ा सा अजनबियत महसूस करते हैं। तो इस दुआ के अल्फाज आपको थोड़े से नए लगेंगे अगर अभी तक आप ये याद नहीं कर चुके। और जो लोग याद कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों को जानते हैं कि इस सब के अंदर हमारे लिए कितनी खैर है। तो पहली दुआ क्या है, हल्का हल्का पढ़ूंगी ताकि आप इसके अल्फाज पे गौर कर सकें। ज़हबल ज़माउ वब्तलतिल उरूक़ु वसबतल अजरु इंशाअल्लाह। अब आप देखिए इसमें भी थोड़े से मखारिज वाजे होते हैं। ذهبا چلی گئی، زماؤ پیاس، وابتلتی اور تر ہو گئیں، نرم ہو گئیں، گیلی ہو گئیں، الاروق رگے وینس سافٹ ہو گئیں، وثبتا اور ثابت ہو گیا، الاجر اجر، ان شاء اگر چاہا، اللہ اللہ نے، ایک سٹریچ میں کیا ہوا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا. کھجور کھا کر یا پانی کا گھونٹ پی کر پھر یہ دعا پڑھیں، پھر آپ اس دعا کا مزہ تو لیں. واقعی لگتا ہے جو میرے اندر کی کیفیت ہے وہی ان الفاظ میں چھپی ہوئی ہے. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر بھی ثابت ہو گیا، اور جو خوشی ہوگی تو کھولنے سے پہلے نہیں، کھولنے کے بعد، کیونکہ دعا کے الفاظ ہی یہ بتا رہے ہیں آپ کو. تو مانگیے گا ذرا اس کو، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ رمضان تک یاد ہو جائے گی.
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
اب آپ کہیں گے جو ہم پہلے پڑھتے تھے اس کا کیا کریں، آہستہ آہستہ اس کو یاد کر لیں. اس کا آپ کو ریفرنس مل رہا ہے، اگر کوئی اور دعا اس سے علاوہ آپ پڑھتے تھے اس کا ریفرنس تھا تو دیکھ لیجئے. اس بک کو کمپائل کرنے والے جو رائٹر تھے ان کو نہیں ملا، یا ان کے مطابق وہ سند، وہ ریفرنس، وہ چین ویک تھی تو انہوں نے نہیں لکھا. تو اس میں بھی کوئی شدت برتنے کی بات نہیں ہے. جب تک مجھے یاد نہیں ہوتی کچھ اور کہہ لیجئے، اور ہمیشہ بیٹر دی بیسٹ، دی بیسٹ پہ چلیے. ایک اور دعا ہے، اب آپ دیکھیے گا کہ یہ دعا کسی نے بھی نہیں سنی ہوگی، میرا گمان ہے. ہو سکتا ہے سنی بھی ہو. آف کورس جو پڑھتے لکھتے ہیں، جن کا علمی دنیا میں کچھ اثر و رسوخ ہے، ان کو تو پتہ ہی ہوگی، لیکن پبلکلی بات کروں تو نہیں پتہ ہوتی. تو اب اس میں کوئی بحث ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ آپ نہ مانگیں، کوئی نہیں کہتا آپ کو ضرور مانگے اگر دل نہیں مانتا. لیکن اگر ایک چیز سامنے آ جائے جو اچھی ہے تو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ریفرنس، اصل بات ریفرنس کی اور کچھ نہیں. تو آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں، یا وہ مانگ لیں یا یہ مانگ لیں. کیا؟ اللہم انی اسألوکا برحمتک اللتی وسعت کل شیئن ان تغفر لی. اللہم انی اسألوکا برحمتک اللتی وسعت کل شیئن ان تغفر لی. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے، جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سوال کرتا ہوں کیا کہ تو مجھے بخش دے. دیکھیے اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والا انداز ہے. بخشش کی دعائیں اتنے ہی جوش اور جذبوں سے مانگی جاتی ہیں. اللہم انی اسألوک برحمتک اللتی وسعت کل شیئن. اتنی بات کہتے ویسے لگتا ہے آپ کے اوپر ایک بڑی گہری چادر آ گئی، نور کی چادر، بادلوں کی طرح چھا گئی، ایسی جس میں روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اور ساتھ ہی بندہ اوقات اپنی دیکھتے ہوئے کہتے ہیں انت اغفر علی، اللہ آپ تو اتنا بخشنے والے ہیں نا، آپ مجھے بخش دے، مجھے بھی چھپا لے. اور آپ جانتے ہیں نا غفر کیا ہوتا ہے، چھپانا، مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں. کہ اللہ گناہ تو بڑے ہیں لیکن آپ کی رحمت کی چادر بھی تو اتنی بڑی ہے نا، تو مجھے اس میں چھپا لے. چلیے آئیے سوچ سے مانگتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی بخشش کو ذہن میں لاتے ہوئے مانگتے ہیں.
اللہم انی اسألوک برحمتک اللتی اللہم انی اسألوک برحمتک اللتی وسعت كل شيء برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
एक बार और मांगिए और बिल्कुल दिल में ऐसे जैसे गुनाहों से टूटन होती है ना, शर्मिंदगी के बोझ के एहसास के साथ इसको फिर मांगते हैं।
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
आमीन सुम्मा आमीन। तो आप इन दोनों में से कोई भी दुआ मांग सकते हैं। अब है इफ्तारी कराने वाले के लिए दुआ, यानी लोग आपको इफ्तारी करवाएं, पकोड़े बनाएं, समोसे, जलेबियाँ और पता नहीं क्या कुछ, और आप उनको क्या दुआ देंगे? अफ्तरा इन दकुमसाइमूना व अकलतामकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ रोज़ा इफ्तार करते रहें और नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहें। जी, कौन है जो किसी का भी रोज़ा ना खुलवाए? और ये रिवायत है अबू दाऊद 3854। नबी सल्लम जब किसी के घर रोज़ा खोलते इफ्तार करते तो ये दुआ मांगते थे। हम अमूमन क्या कहते हैं, पकौड़े मज़े के, समोसे अच्छे, बातें ही बातें, वो भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये दुआ देना ना भूलें। आज से अगर बात कोई आपका रोज़ा खुलवाए तो आप ये दुआ उसको देंगे। और अगर आप देखें ना तो इसका एक तर्जमा ये भी बनता है, अफ्तर इंदकुमुस्साइमुन, रोज़ा खोला तुम्हारे यहाँ रोज़ेदारों ने, यानी रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ से इफ्तार करते हैं, क्योंकि माजी के सीगे हैं अफ्तरा, अकला, सल्लत है। लेकिन अरबी में जब कोई मुस्तकबिल की चीज़ को माजी के सीगों से बोला जाए जैसे यहाँ, तो इसमें शिद्दत आती है। जैसे कुरान में आता है, इक़तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, के लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, तो वहाँ माजी के लफ्ज़ था लेकिन बात मुस्तकबिल की है, तो दुआ बहुत प्यारी है। मुझे लगता है रोज़ा खुलवाने वाला यानी मेज़बान की सारी थकन दूर हो जाती है इसे एक दुआ को सुनकर। और आपने फरमाया कि तुम्हारा खाना ना खाएं मगर मुत्तकी, तो आप जो खाना खाते और खिलाते हैं ना दूसरों को, उसमें तकवा की शर्त रखा करें सामने जहन में, ताकि मेहनत वसूल हो जाए। हमारे यहाँ अमूमन बड़ी बड़ी और बल्कि लैविश किस्म की जो इफ्तारियाँ होती हैं उसमें अमूमन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। बाज़ दफ़ा अल्लाह की हदें भी टूटती दिखी, बाज़ दफ़ा रोज़ा रखने वाले ही नहीं होते, बेरोज़ होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसी फैमिली गेट टुगेदर की सूरत बन जाती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अगले की मेहनत ज़ाया ना कीजिए। एक बंदी ने हो सकता है ख़ुद ही रोज़ा छोड़ दिया आपकी इफ्तारी पकाने के लिए और आप रोज़ा भी नहीं रख रहे, और अगर रोज़ा है और फिर आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे फिर क्या होगा? ऐसे रोज़े का क्या आप समझते हैं कि हाल होगा? तो इन चीज़ों को सिर्फ अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि खाना खिलाना वैसे ही बहुत बड़ी नेकी है, और कहाँ फिर रोज़ेदार को खाना खिलाना। इस दुआ को सब मिलकर मांगेंगे, इफ्तारी कराने वाले के लिए दुआ, अफ्तरा इन दकुमुसाइमूना व अकलतामकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका। जी शुरू कीजिए।
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
और आप जो सल्लत अलैकुम इस पे गौर कर रहे, यानी पहले तो हमने खाना खाने और खिलाने की बात की है ना, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करें, तो जब फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे तो फिर आपकी महरूमी का कोई जवाज़ रहेगा? तो गोया कि आप किसी को एक खाना अच्छी नीयत से खिलाकर फरिश्तों की दुआएं लेने वाले बनते हैं, लेकिन हमारे दीन में हर चीज़ नियतों के साथ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ठीक है, अब यह कि किसी ने रोज़ा खुलवाया, आपने ये दुआ दी, कभी कभी क्या होता है कि इंसान नफली रोज़े से होता है, तो क्या किया जाएगा? नफली रोज़े में दावत कबूल ना करने वाले की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए तो इसे कबूल करनी चाहिए। अगर वो रोज़ेदार हो तो इसे दुआ करनी चाहिए, और अगर वो रोज़े से ना हो तो इसे खाना चाहिए। ये रिवायत भी आपके पास मौजूद है, सही मुस्लिम 1431। तो क्या पता चला कि अगर आप रोज़े से हैं तो इवन आप रोज़ेदार की दावत यानी मेज़बान के दावत देने पर रोज़ा खोल सकते हैं, बीच में भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते, मतलब बिटवीन द डे है, जैसे जोहर असर लंच जिसको आप कहते हैं, ठीक, कोई आपको कहते हैं आए मेरे साथ खाना खाएं, अब रोज़ा है खाना तो नहीं खा रहे, तो आप उसके लिए दुआ कर दीजिए, चाहे तो रोज़ा भी खोल लें और चाहे तो दुआ कर लें। तो ये हमारे दीन की खूबसूरती है। फिर इसी तरह रोज़ेदार को कोई शख्स गाली दे तो इसे ये कहना चाहिए, इन्नी साइमुन, इन्नी साइमुन, बिला शुबा मैं रोज़े से हूँ, बिला शुबा मैं रोज़े से हूँ। मुराद है कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे मेरा रोज़ा ख़राब हो। ये बुखारी के अल्फाज 1894 हैं। तो आमतौर पे भी यही कह दिया करें, क्यों हम किसी की बात के जवाब में बुरे बने? आप देखिए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आईं तो कितनी बातें सुनने और बातें होने का मौका था, अल्लाह ताला ने वहीं रोक दिया, कह दो क्या मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी। और हमारे यहाँ जो जो मारूफ बात है ना कि उस दौर में चुप का रोज़ा होता था, ये आज भी होता है, कोई लड़ाई झगड़ा बात बढ़ेगी नहीं अगर आपने उस मौके पर अपनी ज़ुबान को बंद रखा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आम तौर पे भी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारे मरहले आते हैं, बातें होती हैं, चीज़ें सामने आएंगी जाएंगी, लेकिन बात को जितना आप खींचेंगे, जितना तूल देंगे, वो बिल्कुल च्युइंगम की तरह आगे से आगे लटकती जाएगी। तो आज इसे कोड बना लीजिए कि मैंने किसी भी मौके, रोज़ा मेरा है कि नहीं है, लेकिन मैंने बात नहीं बढ़ानी। जब आप आगे से नहीं बोलेंगे ना तो अगला भी नहीं बोलेगा। कोई अकेला कैसे लड़ेगा, कोई अकेला कैसे बात करेगा, बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़रा दोहरा लीजिए ये अल्फाज।
इन्नी साइमुन, इन्नी साइमुन, इन्नी साइमुन।
फिर इसके बाद देखिए छींक की दुआएं, स्नीजिंग जिसको आप कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से किसी को छींक आए तो इसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। फिर इसके दोस्त या भाई को यानी जो भी उसकी ये बात सुने, कहना चाहिए यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। अगर थोड़ी सी अरबी आती है, ग्रामर आती है, तो जो कोई औरत हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, यरहमु किल्ला, अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। और जब इसका भाई से ये कहे यानी यरहमुकल्ला, तो फिर छींकने वाला उसे ये दुआ देगा, यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल ठीक कर दे। ये रिवायत सही बुखारी की 6224 है, यानी एक पूरा डायलॉग है ना। अच्छा, कभी जिसने छींका वो गैर मुस्लिम है और वो भी कह देते अल्हम्दुलिल्लाह बिलफर्ज, तो फिर आप क्या कहेंगे, यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल ठीक कर दे। यानी उसके लिए तो हिदायत ही की दुआ हो सकती है। मांगिएगा ये सब दुआएं और फिर इसकी हिकमत देखेंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम। अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकल्लाह बालकुम।
आप देखिए कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह का, और आपको पता है कि अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे ना तो आप उसको यरहमुकल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि जब उसने अल्लाह की तारीफ़ नहीं की तो आप उसको फिर क्यों बरकत की दुआ दें। अच्छा कि दूर बैठा हुआ कह रहा है ठीक आई, और उसने पता नहीं आपको कहा है कि नहीं, गुमान कीजिए कि कहा होगा, तो आप कह दीजिए यरहमुकल्लाह, ठीक है। फिर बाद में जो यहदीकुम अल्लाह व युस्लिहु बालकुम, ये कहना कि अल्लाह तुम्हें हिदायत भी दे और तुम्हारे हालात संवार दे, मुराद यह है कि तुम्हारी दीनी दुनियावी हालत बेहतर हो जाए। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली दुआ जो है वो है दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने की दुआ। हमारे यहाँ शादियों के मौके पे तो शायद ही याद रहता हो किसी को मुबारकबाद देनी, हम तो अपने हिसाब से दे रहे होते हैं, लेकिन देखिए दीन कितना प्यारा दीन है, शादी खुशी गम हर मौके पे हमें दुआओं का ज़रिया दिया अल्लाह ने। और याद रखिए कि इससे दिलों में मोहब्बत आती है, कदूरत चली जाती है, एक बड़ा ना नज़र आने वाला रिश्ता बन जाता है। आप किसी को दुआ तो देकर देखें कैसे वो अपने आप को कर्ज़दार समझता है, क्योंकि आज सब कुछ मिलता है, दुआएं नहीं मिलती। और अक्सर लोग कहते हैं दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा, तो मैं कहती हूँ कि दुआ लीजिएगा, दुआ लीजिए, दुआ दीजिए, दुआ कीजिए, काम वो कीजिए कि जिसके बाद आपके लिए दुआएं खुद ही निकलें। सारा दिन मेरा जितना वक्त पढ़ाने के बाद बचता है उसमें अक्सर वक्त सिर्फ लोगों को दुआएं ही देने में गुजरता है, क्योंकि और क्या आप दे सकते हैं किसी को, अच्छी अच्छी दुआएं दे सकते हैं, और दुआओं से दिल को सुकून मिलता है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि जब इनमें से कोई आपके पास कोई सदका लाता है, कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो आप उसको दुआ दिया करें, क्योंकि इन्ना सलातुका सकनुन, आपकी दुआ उनको सुकून देने वाली चीज़ है। तो वाकई आप देखिए किसी को आप खाना खिलाएं तो भी ठीक है, तोहफा दें तो भी ठीक है, लेकिन जो खुशी किसी को दुआ देकर लेकर मिलती है वो नहीं मिलती। तो शादी के मौके पे दूल्हा दुल्हन की ये दुआएं कितनी प्यारी हैं, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, अल्लाह तेरे लिए बरकत करे और तुझ पर बरकत करे और तुम दोनों को खैर और भलाई में जमा करे। यानी दूल्हा दुल्हन यानी न्यूली वेड कपल है उसको ये दुआ दी जा सकती है। अबू दाऊद की रिवायत है 2130। कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उस वक़्त भी आप ये उस पर लिख के दे सकते हैं, मैसेज में दे सकते हैं। और आप देखिए उस वक़्त कितनी ज़रूरत होती है ना बरकतों की, एक नए घर में जाना, एक बच्ची का अपने घर से उठना दूसरे में जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक पौधे को आप अपने घर से निकाल कर किसी और के घर के अंदर लगाएं तो शुरू में पौधा थोड़ा सा कुमला जाता है। इसी तरह लड़कियां भी चाहे जितने मर्जी अच्छे घर में जाएं, लेकिन कुछ दिन तक इस तरह के हालात उनको महसूस होते हैं कि जिसमें उनके लिए थोड़ा सा कुमलाने का मौका होता है और उनको महसूस हो जाती हैं। तो ऐसी दुआएं दिलों को भी जोड़ती हैं और दिलों में मोहब्बत भी आती है। याद रखिए सोने में तोल दें बेटी को, चांदी के कपड़े पहना दें, हीरे जवाहरात, लेकिन मोहब्बत नहीं मिलती, इसके लिए दुआओं की ज़रूरत होती है। बेटी खूबसूरत है, चांद जैसा चेहरा है, लड़का कैसा भी है, लेकिन अगर आप दुआएं सामने रखेंगे तो इन दुआओं से दिल जुड़ते हैं। आइए सोच के साथ दुआ मांगते हैं और अपने प्यारों को भी यही दुआएं दिया करें।
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير
फिर आप देखिए कि शादी करने वाले की अपनी बीवी को दुआ, यानी शौहर या दूल्हा अपनी बीवी को क्या दुआ देगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स शादी करे या खादिमा यानी लौंडी खरीदे तो इसे ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैह व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्री मा जबलतहा अलैह। ऐ अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ तुझसे इसकी भलाई का और इस चीज़ की भलाई का जिस पर तूने इसको पैदा किया, और मैं तेरी पनाह में आता हूँ इसके शर से और इस चीज़ के शर से जिस पर तूने इसे पैदा किया। ये रिवायत मौजूद है अबू दाऊद में 2160 और इब्ने माजा में 2252। और रिवायत में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुख्सती हुई तो शाम को अल्लाह के नबी उनके घर गए और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को यही दुआ सिखाई कि फ़ातिमा के बाल यानी ऐसे सामने से थोड़े से पकड़ कर ये दुआ मांगो। अब आप देखिए कि इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक चीज़ अपनी ज़ात से बहुत अच्छी होती है लेकिन आपको नहीं जचती, कहते हैं ना रास नाना। इसी तरह आप देखिए कि औरतों में भी और मर्दों में भी कुछ जिबिलत की खराबियां होती हैं। जिबिली तौर पे कुछ मर्द गुस्से वाले होते हैं, कुछ औरतें जो होती हैं वो ज़रा सी उठान होती है उनमें, नशूस होता है। आप ये दुआ मांगें जो बचपन की यादात हैं, यानी ये इतनी बारीक बात है इस दुआ में, जिसको भी कभी पहले बताई तो उसने हैरत से इसका इजहार किया कि वाकई अल्लाह के नबी ने क्या खूबसूरत दुआ सिखाई। यानी अल्लाह, इस लड़की के अंदर कोई ऐसा शर है जो शादी के बाद मुझ पे खुलेगा, तो मैं अभी से तेरी पनाह में आता हूँ। और मर्द के लिए भी मांग लेती है तो भी यही बात है। तो लिहाजा इस दुआ को भी मांगिए और शौर के साथ।
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैह وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
और आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, मसलन गाड़ी, कंप्यूटर, कोई भी नई चीज़, तो ये जो लॉन्ड्री पे दलील है इस पे उलेमाए किराम कहते हैं कि आप कोई भी नई चीज़ ले तो ये दुआ उस पे हाथ रख के मांग सकते हैं। देखिए देना तो अल्लाह नहीं है ना, और बंदा मांग ले तो खैर तो उसमें आ ही जाएगी ना। फिर इसी तरह से बीवी के पास आने से पहले की दुआ, शोहर जब अपनी बीवी के पास आता है अपनी ख्वाहिश के लिए तो उससे पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क्तना, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह हमें शैतान मरदूद से बचा और इस औलाद को भी शैतान से बचा जो तू हमें अता फरमाए। ये रिवायत बुखारी की है 6388। इस्लाम में दुआ का मुकाम देखिए कि इंतहाई ज़ाती और पर्सनल नौइयत के कामों में भी दुआएं हैं, क्योंकि इंसान बहक जाता है खुशी के नाम पे और बाज़ दफ़ा हलाल चीज़ को भी हराम कर लेता है। तो ये दुआएं बंदे को हदों में रखती हैं और इस बात का एहसास होता है कि सिर्फ़ ये ख्वाहिश पूरी करना नहीं है, अल्लाह ताला ने ये सारा सिलसिला एक नस्ल की आमद का सिलसिला बनाया है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा अल्लाह से डरेगा इंसान उतना अल्लाह उसकी मदद करेगा। और जहाँ तक रिवायत में आता है कि अगर ये दुआ पढ़ी और इसके बाद अल्लाह ने उम्मीद दिला दी तो अल्लाह ताला उस बच्चे को शैतान मरदूद से बचा लेगा। हर बच्चे की पैदाइश के वक्त शैतान आकर बैठा होता है और उसकी पसली में एक चुभ होता है कुछ, तो बच्चा उससे रोता है। लेकिन हम सब तो इसको इस सोच से पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं सिखाई हैं। आइए इसको मांगते हैं।
बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैतान व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
اب دیکھیے کہ آج لوگ نسلوں کے بگاڑ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کاموں سے نہیں رک پاتے کہ جو واقعی شیاطین کو ہمارے بالکل قریب کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی یہ دعائیں ایسے ہی نہیں ہیں، ان میں بہت کچھ ہے. لیکن آج ہمارا لائف سٹائل ایسا بن گیا کہ جس کے بعد واقعی اللہ ہی بچائے گا تو ہم بچیں گے، ورنہ تو حدیں ختم ہو چکی ہیں ہر چیز کی. تو ان ساری چیزوں کو پڑھتے سنتے وقت ہمیں اس کی بھی دعا کرنی ہے کہ یہ دعائیں بھی تبھی فائدہ دیں گی جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق جئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. آج شادی کے نام پہ اگر کہیں نافرمانیوں کا سلسلہ کھل گیا تو پتہ نہیں ان دعاؤں کا بھی پھر ہمیں کیا اثر ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا ہمیشہ خیر لے کر آتی ہے، اور حیا کے ساتھ ہی جو کام ہوتے ہیں اسی میں برکت ہے. کل تک جو چیزیں چھپ چھپا کے کاموں میں آتی تھی، اب اس کو برملا بڑی بڑی اسکرینوں اور سوشل میڈیا پہ عام کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں اس موضوع پہ بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہماری شادیوں میں خیر تبھی آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک نئے بچے کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اظہار ہوتا ہے. اگر ابھی تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اگر اس پہ ہم ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو ہر قدم پہ دعا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. تو ہم نے اس میں سے یہ سب سیکھا ہے کہ شادی کا بہترین تحفہ مسنون دعا دینا ہے. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کے لیے یا غلام کے لیے اچھے اخلاق کی دعائیں کرنی ہے تاکہ زندگی کا آغاز ایک بڑے خوبصورت طریقے سے ہو. پھر شوہر اور بیوی کے تعلق سے پہلے بھی اللہ کا نام لینا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اپنے جذباتی لمحات میں بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے، اور پھر اولاد بھی شیطان سے بچے گی. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی امید دلا دی تو نیو بورن بیبی کے لیے کیا دعا ہے؟ آپ دیکھیے آئے دنوں ہم دوسروں کے گھروں میں بچوں کی مبارک دینے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے موٹا ہے، کوئی کہتا ہے پیارا ہے، کوئی کہتا ہے نانی پہ دادی پہ، دعا بھی دیجئے. تو آج آپ سیکھیں گے نیو بورن بیبی کو دعا کیا دی جاتی ہے. بارک اللہ لک فی الموہوب لک و شکرت الواہب و بلغ اشدہ و رزقت برہ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس بچے میں برکت دے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور تم عطا کرنے والے کا شکر کرو، اور یہ بچہ اپنی جوانی کی قوتوں کو پہنچے اور تمہیں اس کا حسن سلوک نصیب ہو. دیکھیے ذرا کیا پیاری دعا ہے، کتنی خوشی ہوگی ماں کو یہ دعا سن کر، باپ کو، نانی کو، دادی کو. شرط ایک ہی ہے کہ مطلب آتا ہو. ہم عموماً دعاؤں کو ایک رسم اور برکت سمجھتے ہیں. آپ ہی دعا کر دیں، جس کو یہ دعا دیں نا اس کو ترجمہ بھی دیں. دیکھیں نا برکت دے اللہ، اور اللہ نے دیا نا، جو بچہ دیا ہے، جو پیارا سا بیبی آپ کو ملا ہے. اب یہ بچہ اگر آپ کے لیے خوشی کا نہ بنا تو کیا بنا؟ جوانی سے پہلے ہی چلا گیا، پھر کیا ہوگا؟ اور بڑا ہو تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی اس میں آپ نے بچے کی لمبی عمر بھی مانگ لی ہے اور اس کا باادب ہونا بھی مانگ لیا ہے. پہلے اس کو دہرائیے، پھر انشاءاللہ اس کا جواب سنیں گے کہ جس کو دعا دی گئی ہے اب وہ آگے سے کیا کہے.
بارك الله لك في الموهوب لك بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وشكرت الواهب وبلغ أشده وبلغ أشده ورزقت بره ورزقت بره بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره.
اب آپ دیکھیے کہ جس کا بیبی ہوا ہے اس کو پھر جواب میں کیا کہنا ہے، یا यानी आपने मुबारक दी माँ को दी, बाप को दी, दादा को दी, दादी को दी, जिसको भी दी, उसको फिर दुआ देने वाले को क्या कहना चाहिए? मुबारकबाद सुनने वाला ये जवाब दे, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जज़ाकल्लाहु खैरम व रज़क़कल्लाहु मिस्लहु व अजज़ल सवाबका। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत दे और तुम पर बरकत फरमाए, और अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला दे, और अल्लाह तुम्हें इस जैसा अता फरमाए, और तुम्हारा सवाब बहुत ज़्यादा करे। आप देखिए कि ये दुआ देना था कि लेना था? आपने दी, आपको उससे भी अच्छी दुआ मिल गई। और अगर आपके अपने बच्चे नहीं हैं तो आप ये दुआ किसी को दें, अल्लाह ताला उसकी दुआ के नतीजे में शायद आपको भी वही औलाद अता फरमा दें। और रिवायत मौजूद है अज़कारुन नबवी सफ़ा 349, और इसी तरह तोहफ़तुल मौदूद पेज नंबर 52 है, और अल-मुग़नी इब्ने क़ुदामा की जो किताब है 11वीं जिल्द 126 पेज पे ये दुआ मौजूद है। तो इसको अभी सोच से भी मांगें, याद करें कि दूसरे को जब आप देंगे तो आपको ये दुआ मिलेगी, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जज़ाकल्लाहु खैरम व रज़क़कल्लाहु मिस्लहु व अजज़ल सवाबक। मांगिए ज़रा इसको मिलकर।
بارك الله لك وبارك عليك بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك وأجزل ثوابك بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك।
आप देखिए कि इसमें बरकतों की दुआएं हैं, बेहतर बदले की दुआ है, उस जैसा बच्चा मिलने की दुआ है, सवाब ज़्यादा करने की दुआ है। कभी दिलों में कीने हो सकते हैं? हमारे कल्चर में तो बाज़ दफ़ा मुंह पे कहते हैं मुबारक हो और दिल कट रहा होता है, क्यों इसको मिल गया, ये नेमत इसे क्यों मिली, उसे क्यों मिली। तो बिल्कुल इसी तरह से दिलों के कीने धुलते हैं। आप मस्तून दुआएं याद कर लें, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। बस दुआएं देने वाले बन जाएं, फिर देखें आपको कितनी दुआएं मिलती हैं। देने वाले ही पाते हैं। आप दूसरों को दुआएं दें, दूसरे आपको दुआएं देंगे। आप दूसरों की बुराइयां करें, दूसरे आपकी बुराइयां करेंगे। यानी जो चीज़ हम देते हैं ना, वो ज़्यादा देर हमारे से दूर नहीं होती, वो हमें ही मिल जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चे का होना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो कभी कोई खुशखबरी की बात हो तो क्या करें? खुशखबरी की बात सुनने वाला क्या कहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई खुशी की खबर आती तो आप फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनेमतिही ततेमुस्सालिहात। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसके इनाम के बायस ही नेक काम मुकम्मल होते हैं। यानी उसकी तौफीक के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ये अल्फाज हैं इब्ने माजा के 3803। आप कहेंगे आप तो हर क्लास से पहले ये पढ़ती हैं। आप में से जो लोग मुस्तकिल सुनते हैं, आप देख लीजिए जितने भी सेशन सुबह से अब तक हुए या आपने कभी सुने, हर सेशन पे शुरू में यही दुआ मुझसे निकलती। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर क्लास एक खुशी का मौका होती है। एक खुशखबरी है कि आप सूरत अल-अनाम पढ़ाएंगे, ये खुशखबरी है कि आप राहबरे कामिल पढ़ाएंगे, ये खुशखबरी है कि आप हिस्नुल मुस्लिम पढ़ाएंगे और आप हमें ये करेंगे और वो। तो खुशी है ना, आप जिस चीज़ को अपनी खुशखबरी बनाएं। तो दिन में हम कितनी अच्छी अच्छी खबरें पाते हैं, कितनी खुशखबरियां मिलती हैं। तो आइए ज़रा मिल के इसको दोहराइए।
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
आगे देखिए खुशी के वक्त की दुआ, यानी जब कोई खुशी की खबर आए तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जो पहला जुमला है ना, अल्लाह पाक है, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं 283, और दूसरा जुमला अल्लाह अकबर वाला, ये सही बुखारी की रिवायत 610 में है। अब आप देख रहे हैं कि खुशी के वक्त में अल्लाह का नाम बड़ा करना, क्या पता चला कि बंदा मोमिन अपने गुण नहीं गाता, अल्लाह की तारीफ़ें करता है, और ख़ुद को या अपने इर्द गिर्द वालों को बड़ा नहीं कहता बल्कि अल्लाह के नाम को बड़ा कहता है। आइए मिलकर कहिए।
سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر
जी, फिर खुशखबरी मिलने पर और क्या करेंगे? सजदाए शुक्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खुशी की बात की इत्तला मिलती तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो जाते। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 2774। हमारे अमूमन सजदे की नमाज कहते हैं ना, नमाज शुक्र नहीं, सजदाए शुक्र, जहाँ जिस हाल में बैठे हैं सजदे में चले जाएं। वजू है नहीं है, अब आप पूछे उसमें पढ़ना क्या है, ज़ाहिर है आपके मुंह से खुशी के मारे अच्छी बातें ही निकलेंगी, तो सजदे की हालत में चले जाइए और अल्लाह ताला आपसे इस पे राज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। हम खुशी पे हाय हुर्रा, जश्न, पार्टी, दावत और इससे भी बढ़कर नहीं, नेमतें देने वाले को नहीं भूलते नेमत को पाकर। आज बहुत सारे लोग नेमतों को तो ले लेते हैं, नेमतें देने वालों को भूल जाते हैं। अब इसके बाद चंद दुआएं पनाह के बारे में, क्योंकि अब बच्चा हो गया तो अब उसको अल्लाह की पनाह में तो देना है ना, कि ये तो नहीं सिर्फ खुशखबरियाँ ही लेनी है और मुबारकें ही लेनी, नहीं, बच्चे गिरते पड़ते भी हैं और बहुत कुछ होता है, तो क्या किया जाएगा? बच्चों को अल्लाह की पनाह में देने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को इन अल्फाज के साथ अल्लाह की पनाह में देते थे। ओ ईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहित्तामति मिन कुल्ली शैतानिम वहामतिम व मिन कुल्ली ऐनिल्लामतिन, मैं तुम दोनों को हर शैतान और जहरीले जानवर से और हर लग जाने वाली नज़र से अल्लाह ताला के मुकम्मल कलेमात की पनाह में देता हूँ। आप देखिए तस्निया के सीगे हैं ना, ड्यूल दो थे ना आपके नवासे, और ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 2060। तो आप भी अपने बच्चों को अल्लाह की पनाह में दिया करें। आपको नहीं पता कि बच्चे को क्या चीज़ बुरी लग जाए। बच्चे असल में बड़े मासूम हैं, जैसे आप समझिए कि आप वाइट कलर के कपड़े पहने ना तो उसको बड़ी जल्दी निशान भी पड़ता है, और अगर प्योर कॉटन के कपड़े पहने हो तो जल्दी से रिंकल्स पड़ जाती है ना। इसके बरक्स डार्क कलर या सिंथेटिक चीज़ें इस्तेमाल करनी इसीलिए तो आसान होती हैं कि कुछ भी नहीं, रफ़ एंड टफ़ है ना, तो बच्चा सॉफ्ट होता है, उसको प्यार की भी नज़र लग जाती, गुस्से की भी लग जाती, और दूसरी तो बहरहाल लगेगी ही। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप भी ये दुआ सीखिए।
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة
जी, आप देखिए कि यहाँ कलिमात तामा के हैं, वो सारे कलिमात जिसके ज़रिए अल्लाह ने पनाह लेना सिखाया, पीछे भी हमने दुआ में इसका जिक्र किया था। और आई ने लामा, लामा आप देखिए लमम और लफ्ज़ होता है, यहाँ लामा का लफ्ज़ है, यानी कभी कभी नज़रें ऐसी घट जाती हैं कि उसमें हसद आ जाता है, कुछ लोगों की नज़र भी बहुत लग जाती है। इसी तरह कभी तक शैतान ये जो हाम है ना, ये जानवरों को एक बीमारी हो जाती है, उसकी तरफ भी इशारा है। तो बुनियादी तौर पे इसमें शर से पनाह मांगी जा रही है। फिर इसी तरह आप देखिए कि शाम के वक्त बच्चों की निगरानी के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रात का अंधेरा छा जाने लगे, या फरमाया कि जब शाम हो जाए तो अपने बच्चों को रोक लिया करो, क्योंकि इस वक्त शैतान फैल जाते हैं, और जब रात का कुछ वक्त गुजर जाए तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह अकबर। और यही वो वक्त है जिसमें हम पार्टीज़ में निकलते हैं और मासूम बच्चों को खूब सजा संवार के, पता नहीं क्या क्या, उनको कुल्ले टोपियाँ पहना के, फ्राक आगे चोलियाँ पहना के निकलते हैं। हाँ, मगरिब के वक्त बिल्कुल बच्चों को बाहर नहीं रखना। और ये रिवायत आप देख लीजिए, बुखारी 5623 है, जिसमें हमने ये देखा था कि बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना। ठीक है, मासूम होते हैं, जिन्नात भी गुजरते हैं उस वक़्त, शयातीन भी गुजरते हैं, तो बच्चों को रोकिए। देखिए जितना डिस्प्ले करेंगे ना उतनी नज़रें लगेंगी। अक्सर शादियों से आने के बाद सारी रात बच्चे रोते हैं, ज़ाहिर है आपने भी उसको खूब हद कर दी पहनाने उड़ाने सजाने की, और अब तो एक एक एक्शन की तस्वीरें और वीडियोज़ और स्नैपचैट और न जाने क्या कुछ, नेमतों को छुपाया करते हैं, दिखाया नहीं करते। खूबसूरत चीज़ें दिखाने की नहीं छुपाने की होती हैं। बहरहाल आज के सेशन के आखिरी दुआ पे चलते हैं। जब मुसलमान अपनी तारीफ सुने तो इसे ये दुआ करनी चाहिए, कभी की है आपकी तारीफ किसी ने? और फिर आगे से जो आपकी अदाएँ होती हैं, हाँ नहीं, ऐसे नहीं, छोड़ो ना, जो शर्मिंदा नहीं करो, नहीं, कोई आपकी तारीफ करे तो क्या कहे? अल्लाहुम्मा ला तुआखिसनी बिमा यकूलूना वग़फिरली मा ला यालमूना वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नूना। एला, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं इसकी वजह से मेरी गिरफ्त ना फरमाना, और मुझे वो मुआफ़ फरमा दे जो ये नहीं जानते, और मुझे इससे बेहतर बना दे जो ये मेरे बारे में गुमान रखते हैं। एक एक लफ्ज़ वाकई गोल्डन वर्ड्स में से कह सकते हैं आप। और ये जो रिवायत थी शरह सहीहुल अदब अल मुफरद अलबानी साहब की है, हदीस 585, और शाबुल ईमान जो बहकी की किताब है उसमें हदीस 4876, और कुछ अल्फाज जो बीच में ब्रैकेट्स में वो आप देख रहे हैं शाबुल ईमान में। क्या पता चला कि दुआ सुनकर पहले तो आप डर जाए, या रब अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलून, अल्लाह मुझे ना पकड़ना जो ये कर रहे हैं, मैंने नहीं इनको कहा मेरी तारीफ़ें करें, साथ ही वग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, किस बात पे कि ये क्यों मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, और कहीं मेरे अंदर कोई तकब्बुर ना आ जाए, खुद पसंदी ना आ जाए। और वग़फ़िर ली माला या आलमूना, उस पर भी बख्शे जो इनको नहीं पता, तभी तो कोई किसी की तारीफ़ करता है। ये तो अल्लाह ने हमारे पर्दे भी रखे हैं, बशरियत के बहुत सारे तकाजे होते हैं, अल्लाह ने वो छुपा लिए, तो अल्लाह बस अब मुझे माफ़ कर दे जिसको ये नहीं जानते, और वजालनी खैरा मिम्मा यज़ुन्नूना। सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे उससे अच्छा बना दे जो ये मेरे बारे में गुमान करते हैं। ये है करेक्टर बिल्डिंग, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ये दुआ आपने सोच से मांगनी, क्या याद करनी है, कभी खुदा ना खास्ता कोई आपकी मेरी तारीफ़ कर ही दे ना, तो आगे से ये दुआ मांगिए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा होगा। क्या फिर दोहराते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यकूलूना वग़फिरली मा ला यालमूना वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नूना। तो कहाँ एक बंदा फिर ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ें कराएं, आपने मुझे कुछ कहा नहीं। अच्छा, मोमन हम तारीफ़ सुनने के लिए कहते हैं आज खाना कुछ अच्छा नहीं बना, अगला कहेगा ना ना मुझे तो कुछ आता ही नहीं, अगला के हाँ तुम्हें नहीं आता तो और किसको आता है। ये सब ढकी छुपी बातें हैं, साफ सुथरे रहिए, अच्छी चीज़ है तो बस दुआ कर लीजिए, अच्छी नहीं है तो खाम खा पुरतकल्लफ और झूठे अमेज़िश वाले झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। दोहराइए इस दुआ को प्लीज़।
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون آمين.
آمین. آپ دیکھیے کہ تعریف کرنا بھی اسلام میں اپنی جگہ رکھتا ہے نا، تنقید کا بھی اگر ایک مقام ہے تو تعریف کا بھی ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعریف کرے تو کن لفظوں میں کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بہر صورت، یعنی دیر از نو ادر وے، اپنے دوست کی تعریف کرنی ہو بشرطے کہ وہ اس کی خوبی جانتا ہو، یعنی جھوٹی تعریف نہیں کرنی، واقعی حقیقت میں اس میں وہ خوبی ہے، تو اسے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ایسا، یعنی متقی، نیک، عالم، باعمل اور دیانتدار ہے. تاہم اللہ تعالیٰ اس کا محاسب، یعنی اس کا حساب لینے والا ہے. میں اللہ کے سامنے کسی کو پاک قرار نہیں دے سکتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 3000، یعنی 3000 آپ اگر کہیں گے تو یہ دعا ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. کیا سیکھا ہم نے؟ کہ اللہ کے نبی خوشی کی باتوں کو بھی قبول کرتے تھے، بچے کے ہونے پر بھی تعریف کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، جس کو دی گئی دعا وہ بھی دعا کرے گا. آپ کی کوئی اگر تعریف کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں، اس کی تعریف کے بدلے میں کہیں گے کہ مالک یہ جو کہہ رہا ہے یہ خود ہی کہہ رہا ہے، میں نے نہیں اس کو کہا، چلے میرے جو گناہ اس کو نہیں پتا وہ معاف کر دے اور مجھے اس کے گمان سے زیادہ اچھا کر دے. پھر سجدہ شکر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، ہر موقع پہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور نعمتوں کو اپنے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے چھوٹی بڑی چیزوں میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو لینا ہے. اور جو آخری بات تھی کہ کسی کے بارے میں پورا یقین ہونا کہ بہت ہی اچھا ہے، تو پھر کہیے کیا حسب فلانم واللہ حسیبہ ولا ازکی علی اللہ احدا احسبہ، یعنی وہی بات ہم پڑھ چکے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ایسا متقی، نیک اور عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی تعریفیں سننے اور کہنے سے بھی بچائے. سیکھا کیا؟ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی بیجا تعریف منہ پر نہیں کرتا. ایسی بات کو حدیث میں منہ میں مٹی بھرنا کہا گیا، یعنی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے. اور مصنون الفاظ میں تعریف کرنی چاہیے، اور اپنی تعریف پر فخر کی بجائے اللہ کی پکڑ سے بچنے کی دعا کرنی ہے. ادھر تعریف کی اور گھر جا کے برائی کرنے لگ جائیں، پھر بھی کوئی کر دے تو فرمایا تلک عاجلہ بشرت العاجلہ، یہ خوشخبری ہے، کوئی بات نہیں، مبالغہ نہیں کرنا اور جھوٹی تعریف نہیں کرنی، اور منہ پہ اگر تعریف کرتے ہیں تو پیچھے سے برائی نہیں کرنی. بس یہ تین باتیں یاد رکھ لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.